بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. لله ما في السماوات وما في الأرض، الله کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بہت بابرکت، اللہ کی شان بہت اعلیٰ، سارے کمالات اور خوبیاں اللہ کے پاس، سارے خزانے اللہ کے قبضے میں، ہر چھپی ہوئی چیز اللہ کے سامنے ظاہر ہے، ساری مخلوق کے دل ان کے سامنے مسخر ہیں، اللہ کے ایک ارادے میں ساری عالم کی پیداوار ہے. انسان کا سب سے بڑا دوست عالم ارواح، یہ مختصر سی دنیا، عالم برزق، قبر، حشر اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی آخرت میں انسان کا سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا جاننے والا اللہ سبحانہ و تعالی. جو اللہ سے دوستی کرے گا ہر جگہ فائدہ اٹھائے گا. اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا لوگوں کو سکھائیں کہ اللہ پاک کس چیز سے راضی ہوتے ہیں. اسلام محبت، الفت، خدمت، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، عالمی امن کا پیغام دیتا ہے. کیسے ساری کی ساری انسانیت کامیاب ہو جائے، سب کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، سب اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جائیں، بندوں کے آپس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. اسلام کا عالمی اعلان، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ آدمی ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اسلام میں ذات پات، نسل، برادری، رنگ، زبان، عربی اور عجمی اور کالے اور گورے اور مشرقی اور مغربی، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. جس میں تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کا ڈر ہے، جو ایمان اور عمل صالح والا ہے، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. نماز پڑھنے کو آئے بادشاہ اور فقیر ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. روزہ رکھنے کو آئے تو بادشاہ اور فقیر ایک ہی وقت، صبح صادق سے لے کر مغرب تک سب کو روزہ رکھنا ہے. حج کو گئے بادشاہ اور فقیر ایک ہی جیسے کپڑوں میں، دو سفید چادریں. بادشاہ بھی ایسی آئے گا، فقیر بھی ویسی آئے گا. ہمارے دربار میں آؤ تو اس طرح سے آؤ. حتیٰ کہ جب دنیا سے آخرت کو گئے سفر آخرت، بادشاہ اور فقیر ایک ہی لباس، کفن، سفید کفن دونوں کو دیا گیا. دیندار فقیر، ایمان والا فقیر قیامت کا وی آئی پی ہوگا. بڑے بڑے بادشاہ قطار بنائے، لائن بنائے، خوش آمد کر رہے ہوں گے کسی فقیر کی. ارے بھائی فقیر، میں نے تمہیں روٹی کھلائی تھی. ارے بھائی فقیر، میں نے تمہیں پانی دیے تھے، میں نے تمہیں 5 روپے دیے تھے. آج اللہ کے دربار میں ہماری ذرا سفارش کر دو. ایمان والے فقراء 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو کر عیش کریں گے. ایک دنیا کا ظاہری نظام ہے اور ایک ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی ہے. ظاہری نظام میں یہ امتحان کے واسطے ہیں. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں کتنی جگہ دہرایا گیا. فرعون اپنے محل میں بیٹھا ہے، سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہے، اس کے محل کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، کتنے ہی باغات اور لاکھوں کی فوج اس کے قبضے میں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں. سال ہا سال موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی چوغے میں ایک لباس تھا اس میں گزارا ہوتا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر بستر بنا لیا، دن کو اسی کو اوڑھ لیا۔ یہ تھا ظاہری نظام۔ اب جب پردہ ہٹا، اب آخرت کا کیا نظام ہے؟ فرعون دنیا میں پانی میں غرق ہوا، فرعون صبح شام آگ کے سامنے لایا جاتا، فرعون آخرت میں پوری قوم کو لے کے جہنم میں جا کر گر گا۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک کے 70 سے زیادہ سورتوں میں ذکر آیا۔ آج کوئی آدمی اپنے بچے کا نام فرعون نہیں رکھے گا، لیکن سب لوگ اپنے بچے کا نام موسیٰ رکھنے پہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مسلمان کا مقام اور اسلام کا پیغام، عالمی بھائی چارہ، آپس کا جوڑ، صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہاں کہاں سے آئے، مختلف قبیلوں سے، مختلف علاقوں سے، اور آ کر اسلام کے نام پر، کلمہ کے نام پر جڑ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری غفار کے قبیلے سے آئے، بلال رضی اللہ عنہ حبشہ سے آئے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس ایران سے چل کر آئے، صہیب رومی رضی اللہ عنہ روم سے آئے۔ آپس میں ان کا جوڑ، صحابہ کا آپس میں جوڑ، بھائی چارہ، ہجرت کے بعد انصار اور مہاجرین کی دوستی قائم کی گئی۔ انصار نے جو ان کو مال تھا، دولت، باغ، اس میں سے مہاجرین کی مدد کی۔ بعض لوگ تو اپنا آدھا مال دینے کو تیار ہو گئے۔ بعض انصار نے کہا کسی نے کہ میری دو بیویاں ہیں، اگر آپ چاہیں تو ایک بیوی کو طلاق دے دیں اور عدت کے بعد وہ اس مہاجر سے نکاح کر دیں۔ اتنی قربانی کو تیار۔ صحابہ نے آپس میں قربانی، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ، مدد، اخوت۔ قرآن پاک میں آپ کو ملے گا انما المؤمنون اخوة، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، رحماء بینہم، مہربان ہیں آپس میں، فاعفوا واصفحوا، معاف کرتے رہو، درگزر سے کام لو، فاصفح الصفح الجمیل، درگزر کرو ان سے اچھے انداز میں، واخفض جناحک بالمؤمنین، شفقت سے پیش آؤ مومنوں کے ساتھ، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود حاجت مند ہوں۔ ایک مہمان کو ایک صحابی کے گھر بھیجا گیا۔ مہمان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، بچوں کے کھانے کے لیے کچھ تھوڑی بہت چیز تھی۔ بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے تھوڑی بہت چیز ہے۔ صحابی نے کہا کہ بچوں کو ویسے ہی بہلا کر سلا دو، اور کھانے کے وقت جو ہے وہ لے آؤ اور چراغ بجھا دو، اندھیرا کر دو، اور ہم بھی بیٹھ جائیں گے اور مہمان پیٹ بھر کر کھا لے، اور مہمان کو معلوم بھی نہ ہو کہ ہم نے نہیں کھایا۔ سارا گھر بھوکا رہا، بچے ویسے ہی سو گئے، مہمان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود حاجت مند ہوں۔ صحابہ کے زمانے میں ایک جگہ زکوٰۃ لینے کو گئے تو اونٹ کا ایک بچہ زکوٰۃ میں ڈیو تھا کہ جی اونٹ کا ایک بچہ دے دیجئے۔ صحابی نے کہا ایک بچہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، न बोझ उठा सकता है न किसी काम का, उस बच्चे की जगह एक पूरा ऊंट ज़कात में देता हूँ। एक जगह एक बकरे की सिरी यानी गोश्त का कुछ टुकड़ा हदीये में आया। घर वालों ने कहा मेरे पड़ोसी को ज़्यादा ज़रूरत है। बकरे की सिरी पड़ोसी को भेज दी। पड़ोसी ने कहा मेरे फलां पड़ोसी ज़्यादा गरीब है, उसको ज़रूरत होगी। आगे हदीये में भेज दी। बकरे की सिरी 7 घरों में चक्कर लगाकर वापस उसी घर में आ गई जहाँ से भेजा गया था। हर एक ये समझता था कि दूसरे के घर में ज़रूरत ज़्यादा है, पहले दूसरे की मदद करो। मैदान जंग में है सहाबा, यरमोक की लड़ाई। एक सहाबी आखिरी दम पर है, मौत का वक्त, शहीद हो रहे हैं, प्यास लगी हुई है। उनके चचाजाद भाई पानी पिलाने को आए। जितनी देर में वो पानी पिलाया जाता एक और ज़ख्मी मुसलमान के कराहने की आवाज़ आई। तो इन्होंने कहा पहले उसको पानी पिलाओ। तो वो भाग कर पिलाने वाले उधर गए। जितनी देर में उसको पिलाते एक और साहब कराह रहे थे, आह की आवाज़ आई। उन्होंने कहा दूसरे को पहले पानी पिलाओ। तो वो भाग कर तीसरे के पास पहुँचे तो तीसरे का इंतकाल हो चुका था। भाग कर वापस दूसरे के पास आए, उसका भी इंतकाल हो गया। भाग कर वापस पहले के पास आए, उसका भी इंतकाल हो गया। तीनों शहीद ज़ख्मी दुनिया से प्यासे गए, लेकिन जाते हुए भी अपने भाई को पानी पहले पिलाने की दरख्वास्त की। अल्लाहु अकबर। हर मुसलमान हीरा है। मुसलमान क्या है? नेकियों के पहाड़ हैं। मुसलमान के लिए दुआ करना, एक फरिश्ता आपके लिए दुआ करेगा। मुसलमान की इज्जत काबा शरीफ से भी ज़्यादा। मुसलमान भाई को सलाम करे, मुसलमान बहन को सलाम करे। नेकियां, मुसलमान के लिए मुस्कुराना सदका, मुसाफहा करना गुनाह माफ़ होते हैं। मुसलमान की एक हाजत पूरी करें, अल्लाह पाक आपकी 70 हाजतें पूरी करेंगे। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मुसलमान से मुलाकात, मुसलमान भाई से मिलने गया, अल्लाह के वास्ते जन्नत में महल मिलेगा। मरीज़ की आयादत को गए, 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। मुसलमान के इंतकाल में जनाजे पर गए, एक किरात, एक पहाड़ के बराबर सवाब। कब्रिस्तान ले गए मैयत को, एक और किरात का सवाब। मैयत को गुस्ल देने वाले के सब गुनाह माफ़। मुसलमान क्या है? मरने के बाद भी नेकियों का पहाड़ है। और ये फ़ज़ाइल तो उस मुसलमान के हैं जिसका नाम भी नहीं जानते, जान न पहचान, सिर्फ़ यह है कि ये कलमा पढ़ने वाला है। किसी भी मुल्क का हो, किसी भी इलाके का हो, कोई और ज़बान बोलता हो, ये मुसलमान है, इसके इतने फ़ज़ाइल हैं। हम इसको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, इसका नाम भी नहीं जानते, लेकिन इसमें इतने फ़ज़ाइल, नेकियों का पहाड़ ये अभी भी है। मुसलमान को नुकसान पहुंचाना बहुत गुनाह की बात। 3 दिन से ज़्यादा किसी से बातचीत बंद करना जायज़ नहीं है। 1 साल से ज़्यादा किसी से बातचीत बंद कर दी, इतना गुनाह होगा जैसे कि उसको मार ही डाला। मुसलमान की गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर। मुसलमान की ज़मीन दबा ली, धोखे से किसी की ज़मीन ले ली, क़यामत में 7ों ज़मीन का तौक बनाकर गले में धंसाया जाएगा। किसी को सताया दुनिया में नाहक, क़यामत में मकबूल नेकियां देनी पड़ेंगी। आखरत का मुफलिस एक आदमी आएगा, नमाज रोज़ा नेकियां बहुत लाया, लेकिन दुनिया में किसी को सताया था, अब वो मज़लूम जमा हो गए, या अल्लाह हमारा हिसाब दीजिए, तो उस ज़ालिम से नेकियां लेकर मज़लूम को दे दी जाएंगी। और अगर वो कम पड़ गई तो मज़लूम के गुनाह लेके ज़ालिम के ऊपर डाल दिए जाएंगे। दुनिया आखरत का नुकसान। सारी दुनिया के लोग मिलकर, अरबों लोग मिलकर किसी एक नाहक मुसलमान को कत्ल कर दें, अल्लाह पाक सारी दुनिया को उसकी सज़ा में जहन्नम में डाल देंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। यह है मुसलमान का मुकाम। फिर हमारे घरों में जो मुसलमान हैं, हमारे रिश्तेदार, भाई बहन, घर वाले, वालदैन, वो तो हीरे मोती और जवाहिर की तरह हैं। माँ कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बाप की दुआ कबूल होती है। माँ बाप को नज़र रहमत से देखने से हज और उम्रे का सवाब मिलता है। बीवी और शौहर मोहब्बत की नज़र से एक दूसरे को देखें, अल्लाह पाक दोनों को रहमत की नज़र से देखते हैं। बरकत बड़ों के साथ है, बरकत बड़ों के साथ है। आज का मुसलमान बाज़ारों में बदनज़री कर रहा, गैर महरमों को देख रहा, और घर में जन्नत की हूर है वहाँ से गाफिल है। अपने घर वालों की कदर करें। छोटी छोटी बात पर नाराज़गी हो जाती है। भाई बहन, बीवी, शौहर एक उधर मुंह किए खड़ा है, एक उधर मुंह किए खड़ा है, बात नहीं करते। अरे भाई, इतने फ़ज़ाइल हैं, जो इस झगड़े को ख़त्म करके बातचीत शुरू करेगा, जो सलाम में पहल करेगा, उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ ऊंचा होगा। असल मुकाबला शैतान के साथ है, किसी इंसान के साथ नहीं है। असल मुकाबला शैतान के साथ है। शैतान को शिकस्त दीजिए, अल्लाह पाक को राज़ी कीजिए। एक आदमी अपने घोड़े से नाराज़ हो गया। उसने एजेंट को बुलाया, मियाँ ये घोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, तंग कर रहा है, इसको जाके बेच दो। एजेंट ने उसकी एक मार्केटिंग तैयार की और बाज़ार में जाकर आवाज़ लगानी शुरू की। ये घोड़ा बहुत ज़बरदस्त है, ख़ानदानी है, तेज़ रफ्तार है, सुबुक रफ्तार है, शाही ख़ानदान का है, कम खाता है और बहुत तेज़ चलता है। लोग जमा हो गए, घोड़े की बड़ी बड़ी कीमतें लगाने लगे। मालिक भी वहाँ से गुज़रा तो उसने कान लगा के सुना कि ये घोड़ा शाही ख़ानदान का है और कम खाता है, बहुत तेज़ चलता है, मालिक का वफ़ादार है, और ऐसा घोड़ा तो दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो उसने कहा, अच्छा, मुझे तो कभी ख्याल ही नहीं आया, इतना ज़बरदस्त घोड़ा है, इसको मत बेचो, किसी को मत देना, मुझे को वापस कर दो। फ़ज़ाइल का इल्म। आज दिलों में रूहानी बीमारियां हैं, नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। अल्लाहु अकबर। सूरह हुजरात में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, आयात का तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो, न तो मर्दों को मर्दों पर हंसना चाहिए, क्या अजुब, क्या अजीब कि जिन पर हंसते हैं वो उन हंसने वालों से अल्लाह के नज़दीक बेहतर हों, न औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए, क्या अजीब है कि वो उनसे बेहतर हों, और न तुम एक दूसरे को ताना दो, न एक दूसरे को बुरे लकब से पुकारो, ईमान लाने के बाद गुनाह का नाम बुरा भी लगता है। और जो इन हरकतों से बाज ना आएंगे तो वो लोग गुल्म करने वाले हैं। ऐ ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचा करो, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। किसी के ऐब का सुराग मत लगाया करो, कोई किसी की गीबत ना किया करे। हदीस शरीफ है बुखारी और मुस्लिम में, मुत्तफ़क़ुन अलैह। उसका मफहूम है, इरशाद फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम बदगुमानी से बचो, बदगुमानी सब बातों से ज़्यादा झूठी है, यानी बदगुमानी की बात अक्सर झूठी निकलती है। ना खुद आयब तलाश करो, ना किसी से किसी के आयब की जस्तजू किया करो, और धोखा देने के लिए नीलाम में कीमत मत बढ़ाओ, और आपस में हसद मत करो, ना आपस में कीना रखो, ना आपस में एक दूसरे से क़ता ताल्लुक़ करो, और अल्लाह के बंदे भाई होकर रहो, भाई भाई बनकर रहो। अल्लाह اللہ اکبر، مسلمان کا مقام، حدیث شریف میں اکرام مسلم، مسلمانوں کے حقوق، اس کے بارے میں پڑھیے. جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے تو اس کو مصیبت زدہ کی طرح سے ثواب ملتا ہے. یہ ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کی مصیبت میں اس کو صبر و سکون کی تلقین کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عزت کا لباس پہنائیں گے. اللہ اکبر. طبرانی کی روایت میں ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کی جگہ عدن سے عمان تک کی مسافت کے برابر ہے، اس کے پیالے گنتی میں یعنی کاؤنٹ میں آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہیں، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اس حوض پر جو لوگ سب سے پہلے آئیں گے وہ غریب اور تنگ دست مہاجرین ہوں گے. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکھرے ہوئے بالوں والے، میلے کپڑوں والے، جو ناز و نعمت میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی جن کو خوش آمدید اور ویلکم نہیں کہا جاتا، اور وہ لوگ ان تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمے ہیں جبکہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے. یہ ہوا قیامت کا وی آئی پی. دنیا کا فقیر ہے ظاہری، مگر ایمان والا ہے. حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچے گا، اس کی مہمانی ہوگی آخرت میں. اللہ اکبر. ترمذی شریف میں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، کسی کمزور نظر والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، پتھر کانٹا ہڈی وغیرہ راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے، تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے. طبرانی شریف کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے چل کر جاتا ہے تو اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو آدمی ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، ہر خندق آسمان اور زمین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے مسلمان کا مقام، کہ اس کی مدد کو جانا صرف چلنے سے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب کہ اس آدمی اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی مسافت ہو جائے گی، جبکہ ہر خندق کی کئی مسافت زمین اور آسمان سے زیادہ دور ہے. تو مسلمان کو بھلائی کی طرف دعوت دینا، مسلمان کو اچھی باتیں سکھانا، ترغیب دینا، تعلیم کرنا، الدال علی الخیر کفاعلہ. ارشاد فرمایا، جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. ہر مسلمان کا اکرام کرنا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. دل سے عزت اور احترام کرنا، مسلمان کی قیمت ہمارے دل میں ہو، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، علماء کرام کی قدر کریں، مسلمان کی قدر کریں. جتنے حقوق ہمارے ذمے ہو ہم وہ سب ادا کریں، اپنے حقوق چھوڑ دیں، دوسروں کے حقوق پورے پورے ادا کریں. قیامت کے دن نامہ اعمال کے ترازو میں حسن اخلاق سب سے زیادہ وزنی ہوگا. جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ مسلمان کے فضائل سوچیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کام میں لگے رہتے ہیں جب تک یہ بندہ دوسرے مسلمان کے کام میں لگا رہتا ہے۔ جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ مسلمان کے یہاں مہمان آیا، اس نے مہمان کے اکرام کے لیے ایک تکیہ رکھ دیا۔ چھوٹا سا عمل، مہمان کے اکرام کے لیے ایک تکیہ، ایک پلو رکھ دیا، تو اس پر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فرمایا حدیث شریف میں، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسلمان کے فضائل سوچئے، اور مسلمان کی خدمت کا جو موقع ہو اس میں نیکیاں کمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ آج جو روحانی بیماریاں ہیں دلوں میں، اندھیرا، اس سے نیکی برباد اور گناہ لازم۔ آدمی کے اندر عجب آ جاتا ہے، پرائیڈ، میں بہت اچھا ہوں، کبر و تکبر آ گیا، میں دوسروں سے اچھا ہوں، میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں۔ ریا، شو آف، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا، لوگ کیا کہیں گے۔ حب جاہ، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، ہماری عزت ہو، ہماری شہرت ہو، ہمارا نام ہو، ہماری ناک نہ کٹے۔ شو آف اور حب جاہ، اور یہ بہت باریک بین چیز ہے، اس میں بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان مسجد میں مصلے پر بہت خشوع خضوع سے نفلیں پڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے پیچھے دیکھا تو لوگوں نے آپس میں چرچا کیا کہ کتنا متقی نوجوان ہے، کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے۔ وہ نوجوان نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو دعا میں زور زور سے کہنے لگا کہ اے اللہ، میری نماز بھی قبول کیجئے اور میرا روزہ بھی ہے، مگر یہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، میرا روزہ بھی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایک حاجی صاحب، انہوں نے نوکر سے کہا، ارے میرے مہمان کو اس مٹکے سے پانی پلاؤ جو میں دوسرے حج میں مکہ شریف سے لایا تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں، ایک جملہ بول کے دو حج کا ثواب ضائع کر دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بات چیت میں، لوگوں کے معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ غیبت نہ کریں، تجسس نہ کریں، تردید نہ کریں، تنقیص نہ کریں، تقابل نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حسد، یہ سوچنا کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے۔ بغض اور کینہ، دوسرے کو نقصان پہنچے، ایسی تمنا، ایسی خواہش کرنا۔ دل کی بیماریاں، سارا نقصان اپنا ہی ہے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ رائے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا۔ شو آف اور ریا اور حب جاہ، یہ سب اخلاص کے ڈاکو ہیں۔ جب عمل میں اخلاص نہیں رہا، اللہ کے واسطے عمل نہیں کیا، مخلوق کو دکھانے کے لیے کیا، تو اب اس میں کیسی قبولیت، کہاں کا ثواب۔ نیکی برباد، گناہ لازم۔ شیطان کے داؤ، شیطان سستی اور غفلت سکھاتا ہے، ارے بھائی ابھی مت کرو، بعد میں کرنا، ابھی عمر پڑی ہے، بعد میں کرنا۔ جب انسان نے غفلت اور سستی پر قابو پایا اور نیک عمل شروع کیا، اب شیطان دوسرے دروازے سے آ گیا، ارے بھائی آپ بہت پہنچے ہوئے، اللہ کے ولی ہو گئے۔ اس وقت شیطان کو شکست دینا، یہ جو کچھ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، انسان بنایا، مسلمان بنایا، نیک عمل کی توفیق دی، خود ہی ثواب بھی دیا، ہم سے کام کروا لیا اور ہمیں انعام بھی دیا، पहले भी अल्लाह, बाद में भी अल्लाह, मैं कुछ भी नहीं, अल्लाह पाक ने करम फरमाया, ये सब उनके नज़र करम का सदक़ा है, वो जब चाहें अपनी नेमत वापस ले लें। अल्लाहुम्म लकल हम्द व लकल शुक्र माशा अल्लाह ला हौल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। नेकी कर, दरिया में डाल, डरते डरते अमल करना, डरते डरते अमल करना। अल्लाह अकबर। अपने नफ्स की कड़ी निगरानी करना और अच्छे अखलाक लाना, लोगों से मामलात में अच्छे अखलाक पैदा करना, लोगों का एहसान करना, ये अंबिया अलैहिस्सलाम के अखलाक हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कितना तंग किया, उनको कुएं में डाल दिया था। एक काफ़िला आया, उनको ग़ुलाम बना कर ले गया, बाज़ार में बेचा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिस घर में बढ़े, जिस घर में थे, वहाँ आपको गुनाह की तरफ बुलाया गया, अल्लाह ने बचा दिया। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इतने वाक़यात के बावजूद ईमान यकीन पर रहे, दावत देते रहे, अल्लाह पाक ने वहाँ से निकाल लिया, ज़मीन के ख़जानों पर मुकर्रर कर दिया। तो बाद में जब भाई आए और जब मालूम हुआ, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ़ कर दिया। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकी ने मक्का ने मक्का शरीफ से निकाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, मदीने शरीफ तशरीफ़ ले गए। मुशरिकी ने मक्का ने बार बार आकर जंगें लड़ी, यानी कितने साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाईं। लेकिन जब मक्का फ़तह हो गया और वही मुशरिकी ने मक्का जब सामने आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको आम माफ़ी दे दी। इतना बड़ा लश्कर 10,000 का, तो मुशरिकी ने मक्का समझे कि अब मार कुटाई होगी, अब मारपीट होगी, लूट मार होगी। देखा कि शहर में बिल्कुल अमन है, तो ये लोग कहाँ चले गए। जाकर देखा तो मुसलमान हरम शरीफ में इबादत कर रहे हैं, रो रो करके सबकी हिदायत की दुआ कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग जानी दुश्मन थे, वो भी आकर मुसलमान हो गए। तारीख में देखिए, क़ुरान में अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात पढ़िए, तो कोई नबी आए, उन्होंने लोगों को दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया, लोगों ने वक्त के नबी की बेइज्जती करी, तुम पागल हो, तुम मजनून हो, तुम जादूगर हो, हम तुम्हें शहर से निकाल बाहर करेंगे, हम तुम्हें पत्थर मारेंगे। नबी जवाब में कहते, ऐ मेरी कौम, मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए नासिह नसीहत करने वाला और अमीन हूँ, मैं तो तुमसे कोई उजरत या इनाम या कोई फ़ीस नहीं मांगता, मैं तो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। लोग पत्थर मारें, नबी लहूलहान हो गए, खून बह रहा है, लेकिन अपनी कौम के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम को बख्श दीजिए कि उनको इल्म नहीं है, ये लोग जानते नहीं हैं। इस्लाम की खूबी अदल और इंसाफ, जस्टिस। अदल और इंसाफ कहते हैं आँख के बदले आँख और आदमी के बदले आदमी, लेकिन इस्लाम की खूबी है कि अदल और इंसाफ से भी ऊंचे दो मकामात इस्लाम उनकी तरगीब देता है। अफ़, माफ़ी। किसी ने जुल्म किया, ठीक है, अदल और इंसाफ और जस्टिस आपके लिए है, लेकिन आप माफ़ कर दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और उससे भी ऊपर एक दर्जा है एहसान का, जिसने जुल्म किया, जिसने आपके साथ बुरा सलूक किया, आप न सिर्फ उसको माफ़ कर दें बल्कि उसके ऊपर एहसान भी करें। अव्वलीन और आखरीन के सबसे ऊंचे अखलाक बताए गए, जो आपसे तोड़े आप उससे जोड़ें, जो सलाम ना करे उसको सलाम करें, जो अता से महरूम करे उसको अता करें, जो जुल्म करे उसको माफ़ कर दें, उस पर एहसान करें। अल्लाहु अकबर। चीज़ों को जोड़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है, कपड़ों को जोड़ने के लिए धागे से काम लिया जाता है, सिलाई की जाती है, लोहे के टुकड़ों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग करनी पड़ती है। मुसलमानों और इंसानों के दिलों को जोड़ने के लिए नबियों के अखलाक। जो तोड़े उससे जोड़ो, जो जुल्म करे उसको माफ़ कर दो। आपस में सलाम को फैलाइए, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए, दिल से दुआ। आपस में हदिया, तोहफे, तहाइफ दिया कीजिए। शहद की मक्खियों का इत्तेहाद मिलकर क्या फ़ायदा हुआ? इतना सारा मीठा शहद उन्होंने बनाया जिसमें शिफा है और इंसानों के फ़ायदे की चीज़ है। छोटे छोटे बारीक धागे जब आपस में मिल जाते हैं तो एक मज़बूत रस्सी बन जाती है, इसको तोड़ना मुश्किल है। इसी तरह जब मुसलमानों के दिल आपस में जुड़ जाएं, इत्तेहाद, उख़ुव्वत, भाईचारा, तो आलम में, शहरों में, मुल्कों में अमन व सुकून, मोहब्बत, प्यार की फ़िज़ा हो जाती है। उम्मत पना, जान, माल, वक्त और जज्बात की कुर्बानी देकर सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम ने एक उम्मत बनाई। हाल ये था कि मस्जिद नबी में चिराग नहीं जलता, मस्जिद नबी शरीफ में चिराग नहीं जलता, दरख्तों के पत्तों की छत है। जब बारिश होती है तो ज़मीन पर कीचड़ सी हो जाती है, न चिराग है, न लालटेन है, न एयर कंडीशन है, न कारपेट है, न कालीन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सारा अरब मुसलमान हो गया, मुट्ठी भर मुसलमान। अल्लाह पाक ने ज़मीन पर मुख्तलिफ बर्रे आज़मों पर हुकूमत फैला दी। आज घरों में रोशनी है मगर दिलों में अंधेरा है। मुसलमान अपना मुकाम भूल गया। मुसलमान की मिसाल, मोमिन की मिसाल फलदार दरख्त की तरह है। फलदार दरख्त, लोग अगर पत्थर भी मारें तो दरख्त फल देता है। एक बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि मस्जिद में अगर ऐलान हो कि सबसे बुरा आदमी और बदमाश बाहर निकलो, तो फरमाया कि सबसे पहले मैं बाहर आ जाऊंगा। अपने आप को सबसे कमतर समझना। एक बुज़ुर्ग से लोगों ने शिकायत की, हज़रत बारिश नहीं हो रही। वो बोले, मेरे गुनाहों की नहुसत की वजह से नहीं हो रही, मैं शहर से चला जाता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपस के ताल्लुकात में, मिलने मिलाने में, अपने महल्ले शहर में देने वाले बनिए। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। लोगों के ऐब पर, दूसरों के डिफेक्ट पर नज़र मत कीजिए। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने कहा, मौलाना देखिए ये लोग मुसलमान, ये सिनेमा हॉल मूवी के आगे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। मौलाना ने कहा, ये हमसे अच्छे लोग हैं। कैसे? कहने लगे, अभी ऐलान हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने गुस्ताखी की है, तो ये सारे लोग इतने ईमान वाले हैं कि कोई भी सिनेमा हॉल में नहीं ठहरेगा, सब भाग के जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस्लाम का जौहर इकराम मुस्लिम और अच्छे अखलाक। इंडोनेशिया मुसलमान आबादी का सबसे बड़ा मुल्क, इंडोनेशिया में कौन सी फ़ौज गई थी भाई? कुछ मुसलमान चले गए, पूरा मुल्क मुसलमान हो गया। चीन में कितने लोग गए? 8 मुसलमान चीन को गए, उनको देखकर 8 करोड़ मुसलमान आज हैं। एक आदमी के हिस्से में 1 करोड़ मुसलमान, 10 मिलियन एक आदमी के हिस्से में आ गए। अल्लाह अकबर। असल मकसद तालीम का, बुज़ुर्गों से इस्लाही ताल्लुक़ का, अपने नफ्स की इस्लाह है। अपने नफ्स की इस्लाह बहुत नाजुक रास्ता है, जैसे पहाड़ी पर चढ़ना। शैतान सिरात मुस्तकीम पर बैठा रहता है। जो असल रास्ता है अल्लाह से पहुँच के पास ले जाने वाला, शैतान वहीं से हटाता है। मिसाल ऐसी है फितने के ज़माने में کہ راستہ اندھیرا ہے اور آنکھوں پر غفلت اور خواہشات کی پٹی بندھی ہوئی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، صحیح بات سجھائی نہیں دیتی، راستے میں پھسلن ہے، زمین پر گڑھے بنے ہوئے ہیں اونچے نیچے، اور دائیں بائیں کانٹے ہیں، اور پیچھے سے شیطانی دھکے پڑ رہے ہیں، ارے میاں اور تیز جاؤ، اور تیز جاؤ، دیکھو زمانہ کہاں پہنچ گیا، دیکھو تمہارے پڑوسی، تمہارے دوست، تمہارے کلاس فیلو، تمہارے کولیگز کس طرح زندگی میں مزے اڑا رہے ہیں، تم بھی اڑاؤ۔ شیطانی دھکے پیچھے سے، راستہ اندھیرا، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی اور پھسلن، اب انجام معلوم ہے کیا ہوگا، گرو گے۔ یہاں ضرورت ہوتی ہے شیخ کی، کہ جتنے حالات، واقعات، احوال، پریشانیاں، اپنے مصلح، اپنے شیخ سے مشورہ کر کے، پوچھ پوچھ کر، استخارے سے، صلاۃ الحاجت سے، ڈر ڈر کر چلنے والوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اپنے زبان کی ہمیشہ حفاظت کیجیے، زبان سے موتی، ہیرے، جواہرات کمائے جا سکتے ہیں، کروڑ پتی کی زبان ہے، بلینئرز مشین۔ قرآن کی تلاوت، استغفار، تسبیحات، دعائیں، تعلیم، سیکھنا سکھانا، دعوت، کسی غمزدہ کی تسلی، زبان سے ہیرے، موتی، جواہرات کمائے جا سکتے ہیں۔ وہی زبان اگر آدمی خیال نہ کرے، فضولیات، سیاسیات، گپ شپ، ادھر ادھر کی باتیں، فضول وقت ضائع کرنا، گویا ہیرے موتی پھینک دیے، کنکر اور پتھر اور مٹی کے بڑے بڑے تھیلے اپنے کندھے پر لاد لی۔ اس میں بھی آدمی اگر ہوشیار نہ ہو اور خیال نہ کرے تو غیبتیں، شکایتیں، لڑائی، جھگڑا، تان، جھوٹ، لعنت، ملامت، چغلی کھانا، دھوکہ دینا، ایسا ہے کہ ہیرے موتی تو پھینک دیے، کنکر پتھر بھی پھینک دیے اور آگ لے کر واپس آئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لقمان حکیم نے فرمایا کہ میں جب بھی پچھتایا بول کر پچھتایا، خاموش رہا تو کوئی پچھتانے کی بات نہیں تھی، جب بھی پچھتایا بول کر پچھتایا۔ حدیث شریف میں ہے، من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اپنے ملنے جلنے والے، گھر میں، پڑوس میں، محلے میں، یہ سمجھیں کہ ہر مسلمان مجھ سے اچھا ہے، سارا گھر، سارا محلہ، ساری مسجد والے، سارے شہر والے، ساری دنیا کے مسلمان، یہ تو واقعی مجھ سے افضل ہیں، معلوم نہیں کس کا کیا عمل قبول ہے، اللہ کے ہاں کون کس درجے کا ہے، میں سب سے کم تر ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھیں اور 50 سال سے زیادہ دعوت سے اور تصنیف سے اور کتابوں سے اور اپنے شاگردوں کی تربیت سے امت کی خدمت فرمائی، وہ فرماتے تھے کہ میں تمام مسلمانوں سے فی الحال کم تر ہوں، اور تمام کافروں اور جانوروں سے بھی فی المعال، یعنی آخرت کے انجام کے اعتبار سے معلوم نہیں کہ وہاں کیا ہوگا، میں کم تر ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی کافر اپنی موت سے پہلے مسلمان ہو جائے اور مجھ سے اونچے درجے پر چلا جائے، اور جانوروں کا آخرت میں جانوروں کو جنت جہنم نہیں بھیجا جائے گا، ان کو وہیں میدان حشر میں حساب کتاب کے بعد ختم کر دیا جائے گا۔ تو اگر ایک جانور وہ جہنم سے بچ گیا اور مجھ کو جہنم میں جانا پڑا، تو میں تو جانور سے بھی کم تر ہو گیا۔ اس لیے بعض شیوخ فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں تکبر کا شبہ ہو، وہ بطور وظیفے کے، بطور دعا کے صبح شام کہہ لیا کرے کہ یا اللہ، میں تمام مسلمانوں سے فی الحال کم تر ہوں، اور کافروں اور جانوروں سے بھی آخرت کے انجام کے اعتبار سے معلوم نہیں، شاید کم تر ہوں۔ اللہ نے دو آنکھیں دیں، ایک سے اپنی خرابیاں اور اپنے عیوب دیکھنا، اپنے ڈیفیکٹ اور اپنے گناہوں کی فہرست بنانا اور اپنے شیخ کے پاس مقدمہ لے کے جانا، میرے پاس اندر یہ خرابی، میرے اندر یہ خرابی، میرے اندر یہ خرابی، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب पेट ख़राब है, सर में दर्द है, नींद नहीं आती वगैरह वगैरह। इस तरह शुयूख के पास अपने अयूब की लिस्ट लेकर जाना और शेख सफाई करता है, नहीं भाई आपके अंदर ये बीमारी नहीं है, लेकिन आप पहले अपने ऊपर मुकदमा कायम करें। और दूसरी आँख से दूसरों की खूबियाँ देखना, मेरा पड़ोस इतना अच्छा, मेरे भाई बहन इतने अच्छे, मेरे घर वाले इतने अच्छे। दूसरी आँख से दूसरों की खूबियाँ देखना, इकराम मुस्लिम, अपने हक़ को छोड़ देना, दूसरे का हक़ पूरा पूरा देना, सारी कुर्बानी मेरी और सारा फ़ायदा और नाम और शोहरत दूसरों का, इससे सारे लोग जुड़ जाते हैं। सीरत का सबक देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल से ऊपर दीन की मेहनत फरमा रहे हैं, मुशरिकीन से मुकाबला हो रहा है, उनके जुल्म पर सब्र और बर्दाश्त हो रहा है, और आखिर में जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ और काबा शरीफ की चाबी आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी चाबी, जो दुनिया की सबसे अहम मस्जिद और जहां एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर, काबा शरीफ की चाबी आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी आदमी को वापस कर दी जिसके पास वो पहले से थी। जाओ मियाँ, ये तुम्हारे लिए। सारी कुर्बानी हमारी और सारा फ़ायदा आपका। अपने जानी दुश्मनों को माफ़ कर दिया। जब ज़कात का निज़ाम कायम किया कि लोगों के माल में से ज़कात आएगी और गरीबों को दिया जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान को अलग कर लिया। बनू हाशिम, हमारे ख़ानदान वाले यानी सैयद लोग, सादात, ज़कात नहीं ले सकते। सारी कुर्बानी अपनी, सारा फ़ायदा दूसरों का। इसको कहते हैं इकराम मुस्लिम। इससे जोड़ पैदा होता है और इसके ज़रिए दिल जीते जाते हैं और इसके ज़रिए इस्लाम की खूबियाँ सामने आती हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनको पब्लिक में खड़ा करके कोड़े लगाए गए, इमाम हर कोड़े पर माफ़ कर देते। मेरी वजह से किसी मुसलमान का आखरत में हिसाब हो, मेरी वजह से कोई मुसलमान आखरत में मुश्किल में पड़े, उसमें मेरा क्या फ़ायदा। इमाम साहब हर कोड़े लगाने वाले को माफ़ कर देते। जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया कि हमारे जिस मसले में कोड़ा लगाया गया और जिस मसले में ये तकलीफ़ दी गई, उसका जो फ़ैसला है कि कौन हक़ पर था, वो हमारे जनाजे को देखकर होगा। तो जब इमाम साहब का इंतकाल हुआ, इतने लोग, इतने मुसलमान लाखों की तादाद में जनाजे पर शरीक हुए, जनाजे के साथ चलते, इतनी शान और शौकत के साथ इमाम साहब का जनाज़ा निकला। एक रवायत में है कि परिंदे ऊपर ऊपर से गिर रहे थे उसके ऊपर। गैर मुस्लिमों ने देखा ऐसी शान से एक मुसलमान का जनाज़ा जा रहा है, तो तारीख़ की किताबों में लिखा है कि 20,000 गैर मुस्लिम उस जनाजे को देखकर मुसलमान हो गए। आशिक का जनाजा है, धूम से निकले, साइलेंट दावत, ना कोई तकरीर हुई, ना कोई किताब तकसीम की गई, ना कोई दलील और प्रूफ दिया गया। 20,000 आदमी सिर्फ जनाजे को देखकर मुसलमान हो गए। ये होता है अल्लाह की तरफ से इनाम, सब्र और बर्दाश्त, तहम्मुल, कुर्बानी, माफ़ी, उसका थवाब। इमाम साहब को दफन किया गया तो 230 साल से भी ज़्यादा वक्त गुज़र चुका था। जब बराबर में कफन किसी और के लिए कब्र खोदी गई, तो गलती से इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र खुल गई। देखा कि इमाम साहब का कफन अभी तक बिल्कुल ताज़ा है और ऐसे लेटे हुए हैं जैसे आज ही दफन किए गए। इतना नूर, जिसको अल्लाह रखे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमारी मुक़द्दस माएँ और बहनें, आज दुनिया का फसाद खुद गर्ज़ अक़ल की वजह से, मैं, मेरा और मुझे, जान माल और वक्त का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज़ें अल्लाह ने जो दी हैं, इम्तहान के वास्ते दी हैं, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। اسباب پر سے یقین ہٹائیے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے چیزیں دی ہیں ان میں امتحان ہے، 100% دین اس میں لائیں۔ اگر مال دیا ہے، چیزیں دی ہیں، اب ان کی آمدنی، ان کا خرچ، ان پر زکوٰۃ، ان پر وراثت، ان پر انہیریٹنس معاملات، ان کا امتحان ہے، اس لیے دیا ہے۔ پھر جو اسباب ہیں ان کو اپنی خواہشات پر نہیں لگانا۔ جو اسباب ہیں اللہ نے دین پھیلانے کے لیے دیے ہیں، دوسروں کی خدمت کے واسطے دیے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب انسان مقصد زندگی بھول جاتا ہے تو گھروں میں جھگڑے، ناراضگی، آپس میں بات چیت بند، شہروں میں قتل و غارت، ملکوں میں جنگیں، کیا ہوا؟ انسان آخرت کو، اللہ کو بھول گیا، جنت کے فائدے بھول گیا۔ یہ جھگڑے جو پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا جائے کہ جھگڑے پیدا ہی نہ ہوں؟ دو کام کر لیجئے۔ زندگی میں کسی کو فائدہ پہنچائیے تو صرف اللہ کے لیے۔ نیکی کر، دریا میں ڈال، احسان مت جتاؤ۔ کسی کو فائدہ پہنچاؤ بس اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے اجر و ثواب کے لیے۔ نمبر دو، کسی مخلوق سے کوئی امید، کوئی توقع، کوئی ایکسپیکٹیشن نہ ہو کہ میرا کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار، کوئی میرے کام آئے گا۔ کسی مخلوق سے کوئی امید مت رکھیے۔ مخلوق سے امید ہوگی، رنج ہوگا، ڈپریشن ہوگا، کوئی میرے کام نہیں آیا۔ ارے یہ سب مخلوق عاجز اینٹ پتھر کی طرح ہیں، نہ فائدہ نہ نقصان، صرف اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کریں، اللہ پاک جس طرح چاہیں مدد فرمائیں گے۔ کائنات میں، دنیا میں اصل چیز شر ہے، اصل چیز تاریکی، اندھیرا۔ خیر آ گیا، کوئی اچھائی مل گئی تو الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک شکر۔ خیر لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، شر اور برائی خود بخود آ جاتی ہے۔ آپ اپنا ذہن ایسا بنائیں تو جھگڑے پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ پھر یہ سوچئے کہ کوئی آدمی کے دل میں بغض اور کینہ ہو تو یہ مغفرت سے رکاوٹ بنا دیتا ہے۔ شب برات ہے، لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، یہ آدمی محروم ہے۔ کیوں؟ اپنے کسی رشتہ دار سے قطع تعلق کیا، کسی سے بغض اور کینہ دل میں لکھے بیٹھا ہے۔ پیر اور جمعرات کو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، لوگ مسلمانوں کی مغفرت ہو رہی ہے، یہ آدمی مغفرت سے محروم ہے۔ کیوں؟ یہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کا معاملہ چھوڑے رکھو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ لوگوں کو اطلاع دیں کہ شب قدر، لیلۃ القدر کس رات کو ہے، لیکن دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی اطلاع اور تعین اٹھا لیا گیا۔ یعنی امت کو اتنی بڑی خبر اور اطلاع اور فضیلت ملنے والی تھی کہ لیلۃ القدر کس رات کو ہے، لیکن دو آدمیوں کی جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے وہ خبر اور اطلاع اٹھا لی گئی۔ تو جھگڑا اتنی بری چیز ہے۔ جھگڑا چھوڑنے پر جنت کا محل ملتا ہے، جو آدمی حق پر ہے عدالت میں جا کر لے سکتا ہے، لیکن جھگڑا چھوڑ دے، ارے بھائی تو ہی لے لے، تو اس آدمی کو جنت کا محل ملے گا۔ اللہ اکبر۔ دو آدمی نماز میں صف اول کے لیے دوڑے، نماز کھڑی ہو رہی ہے، پہلی صف میں ایک جگہ خالی ہے، دو آدمی آگے بڑھے، جو آدمی دوسرے کو بڑھا دے گا، صاحب آپ چلے جائیے، تو اس کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب ویسے ہی مل جائے گا۔ اور بعض روایت میں ایک مفتی صاحب فرماتے تھے کہ 40 دن تک صف اول میں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اگر امت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو خانہ کعبہ میں حج اور عمرے کے دوران حجر اسود پر کوئی بھیڑ نہ ہو، خالی پڑا ہوا ہے، پیچھے لوگ ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں، ارے بھائی آپ جائیے، ارے بھائی آپ جائیے، ارے بھائی آپ جائیے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کسی الیکشن میں، انتخاب میں، شہر میں، ملک میں کوئی آدمی کھڑا نہ ہو، لوگ خوش آمد کریں، ارے بھائی آپ کونسلر بن جائیے، آپ کمشنر بن جائیے، अरे भाई आप शहर के मेयर बन जाइए, आप गवर्नर बन जाइए, आप बादशाह बन जाइए, और लोग भागें, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, अरे मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। एक सहाबी ने घोड़ा ख़रीदा, ग़ुलाम को भेजा जाओ घोड़ा ख़रीद कर लाओ। तो वो आदमी भी आया और बेचने वाला भी आया। उन्होंने कहा भाई घोड़ा कितने का है? उसने कहा 300 दिरहम। साहबी ने कहा 300 तो कुछ कम है, अगर मैं इसके 400 दूं तो कैसा रहे? बेचने वाला बड़ा खुश, हाँ साहब 400 दे दीजिए। उन्होंने फिर एक नज़र डाली, कहने लगे 400 भी कम है, अगर मैं इसके 500 दूं तो क्या ख्याल है? बेचने वाला और भी खुश, उन्होंने कहा 500 भी कम है मियाँ, अगर मैं 600 दूं तो फिर क्या ख्याल है? उसने कहा तो और भी अच्छा है। करते 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 800 का ख़रीदा। कितने की थी चीज़? 300 की, और ख़रीदा कितने का? 800 का। कहने लगे अगर मैं ख़ुद बेच रहा होता तो मैं 800 से कम का नहीं बेचता, तो मैं जब ख़रीदूँ तो फिर क्यों इसको नुकसान पहुँचाऊँ? मस्जिद में लोग आते हैं, आज की दुनिया में मस्जिद में पार्किंग बनी हुई होती है। एक साहब आए नमाज को बहुत सवेरे, और मस्जिद की पार्किंग से बहुत दूर जाके गाड़ी पार्क करके चलते हुए आ रहे हैं। अरे मियाँ आप तो सामने पार्क कर लेते, आपका हक था। कहने लगे आप बात नहीं समझते, जो लोग बिल्कुल आखिर में आएंगे, आखिरी मिनट में, वो जल्दी में होंगे, मस्जिद की नमाज़ छूट रही होगी, इमाम साहब खड़े होंगे, तो असल में उन लोगों का हक है कि वो सामने पार्क करें। मैं तो सवेरे आया था, मैं दूर कहीं पार्क करके, मेरे पास वक्त है, मैं तो आराम से आ सकता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जब इकराम मुस्लिम, मुसलमान की कद्र व कीमत, भाईचारा, अख़ुव्वत, दूसरे के लिए कुर्बानी, बात समझ में आ जाए तो फिर क्या होता है? दुकान पर गाहक आ गया, कस्टमर। अरे भाई आपके पास ये सामान है? दुकानदार ने कहा मेरे पास सामान है, और मैं सस्ता भी दूंगा, डिस्काउंट पर भी दूंगा, और उसकी वारंटी भी है, सामान भी ठीक होगा, लेकिन एक दरख्वास्त है। क्या दरख्वास्त है? भाई मेरे यहाँ से मत खरीदिए, ये बराबर में दुकान है, वहाँ से ख़रीद लीजिए। कस्टमर ने कहा ऐसी क्या बात है? दुकानदार कहने लगा भाई आज सुबह से मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा सेल हो गई, बहुत लोग सामान खरीद कर ले गए, मेरे भाई की दुकान पे कोई नहीं आया सुबह से, आप बराए मेहरबानी बराबर की दुकान से ख़रीद लीजिए। अल्लाह अकबर। लोग जहाज़ों पर सफ़र करते हैं, अमेरिका से बैठकर पाकिस्तान, इंडिया, 15-15 घंटे की फ़्लाइट। आपने देखा होगा कि जहाज़ का अमला, ये जितने खिदमत में लोग मुकर्रर होते हैं, 15 घंटे जाग कर उन्होंने मुसाफिरों की खिदमत की। और जब लोग जहाज़ से उतर रहे होते हैं तो सारा अमला, सारे खिदमत वाले दरवाज़े के पास खड़े होते हैं, और हर एक मुस्कुरा मुस्कुरा के सलाम और शुक्रिया अदा करता है, सबको थैंक यू कहते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा सफ़र में नींद उनकी ख़राब हुई और खिदमत में रहे, और फिर भी मुस्कुराकर सलाम और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा के ज़माने में उमर रदी अल्लाह अन्हु रातों को गश्त करते, खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, रातों को गश्त कर रहे हैं, ना कोई फ़ौज है ना पुलिस है, और जा जा कर देख रहे हैं कोई भूखा तो नहीं है, किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं है, शहर के बाहर जाकर देख कर आ रहे हैं। फरमाते थे दरियाए फुरात के किनारे कोई खारिशी कुत्ता, वो भी अगर तकलीफ़ में हो, मैं ज़िम्मेदार हूँ। उमर रदी अल्लाह अन्हु ने रात को देखा कि शहर से बाहर एक देहाती खेमा लगाए बैठा है, खेमे के अंदर से कुछ किसी के कराहने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने जाकर मालूम किया, अरे मियाँ क्या तकलीफ़ है? उसने कहा ये अंदर कोई औरत है, घर वाले हैं, और विलादत का, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, और कोई खिदमत के वास्ते कोई दाई कोई औरत नहीं है। उमर रदी अल्लाह अन्हु फ़ौरन घर आए, अपनी अहलिया को जगाया, उम्मे कुलसूम, फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा की बेटी, उनको जगाया, यानी वक्त की मलका उनको जगाया अमीरुल मोमिनीन ने कि अरे भाई खिदमत का तकाज़ा आ गया है, बाहर शहर के बाहर एक औरत है, उसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है और कोई खिदमत को मौजूद नहीं, तो तुम चलो। आधी रात को अपनी अहलिया को उठाकर वीरान जंगल में खिदमत के वास्ते ले गए और साथ में देगची भी और पकाने का सामान भी ले गए। अब मलका और अहलिया जो हैं वो खेमे के अंदर औरत की खिदमत कर रही हैं और बादशाह और खलीफा जो हैं वो बाहर बैठकर दाने डालकर कुछ पका रहे हैं देगची में। ऐसा होता है खिदमत का काम, खिदमत का काम। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वज़ू फरमा रहे थे, अपना इमामा उतार कर रखा, एक चोर आ गया और इमामे को चुरा कर जाने लगा। इमाम साहब ने पुकार के कहा, अरे ठहरो मियाँ, तुम्हारे ऊपर ये चोरी का गुनाह आएगा, मैं ये इमामा तुमको हदिया कर देता हूँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट है, क्यों एक मुसलमान पर गुनाह आए। मस्जिद में तीन बुज़ुर्ग बैठे थे, एक आदमी आया और उसने जाकर तीनों बुज़ुर्गों को एक एक मुक्का ज़ोर से उनकी कमर पर मारा, देखो क्या करते हैं। पहले बुज़ुर्ग वो अपने ज़िक्र तिलावत में तस्बीह में लगे रहे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कौन है भाई, क्या मुक्का मारा, कितनी देर मैं देखूँ, मेरा वक्त ख़राब होगा, मैं तो वैसे ही ज़िक्र व इबादत में लगा हूँ। उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। वो आदमी गया दूसरे बुज़ुर्ग के कमर में एक ज़ोर का मुक्का मारा, तो वो उन्होंने एक नज़र मुड़कर देखा और वैसा ही एक मुक्का उन्होंने भी मार दिया, फिर अपने काम में लग गए, अपने ज़िक्र इबादत में। वो आदमी तीसरे बुज़ुर्ग के पास पहुंचा और एक ज़ोर का मुक्का उनकी पीठ में मारा, तीसरे बुज़ुर्ग ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और फरमाने लगे, बेटा तुमको चोट तो नहीं लगी, यानी मेरी पीठ में जो हड्डियाँ थीं जब तुमने मारा तो तुम्हारी उंगलियों में चोट लगी होगी, बेटा तुमको चोट तो नहीं लगी। अब ये आदमी वापस अपने उस्ताद के पास आया कि मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ, तो उस्ताद ने समझाया कि पहले बुज़ुर्ग अपनी इबादत और तस्बीह में इतने ज़्यादा लगे हुए थे कि उन्होंने कहा कोई नुकसान हो गया तो हो गया, अब पीठ पर तकलीफ़ हो गई, अब मैं कहाँ उसमें वक्त ज़ाया करूँ कि कौन था, किसने मारा, और उसकी तफ्तीश और उसको सोचना, मेरा वक्त ख़राब होगा, मैं अपने आखरत के बागात और महलात बनाता रहूँ। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। दूसरे बुज़ुर्ग ने यह सोचा कि अगर मैं इस आदमी से बदला नहीं लूँगा तो हो सकता है कहीं इस पर अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, इसलिए बेहतर है कि इस आदमी को बचाने के लिए मैं वैसा ही एक मुक्का इसको मार दूँ ताकि ये अल्लाह के अज़ाब से बच जाए। तीसरे बुज़ुर्ग ने उनके ऊपर मखलूक़ की शफ़क़त और रहमत इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अपने मुक्के और तकलीफ़ को तो भूल गए और ये सोचा कि इस बेचारे के हाथ में चोट लगी होगी, तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुमको चोट तो नहीं लगी। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये हाल होता है हमारे बुज़ुर्गों का और मखलूक़ के साथ उनका बर्ताव, मखलूक़ के साथ उनका बर्ताव। अल्लाह अकबर। इंग्लैंड में एक खातून मुसलमान हुई और उनकी किसी मुसलमान से शादी हुई और कुछ दिनों के बाद उन्होंने सवाल पूछा। उनका सवाल था कि मेरा शौहर गरीब है और ये बेचारा, एक शादी तो इसकी हो गई, अब दूसरी शादी भी करना चाहता है लेकिन इसके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है इस्लाम में, क्या ये जायज़ है कि मैं इसका महर माफ़ कर दूं ताकि बेचारा ये उन पैसों से जो मुझको महर में देने वाला था ये बेचारा दूसरी शादी कर सके जो इसकी ख्वाहिश है। नो मुस्लिम बीवी ये सवाल पूछ रही है कि क्या इस्लाम में ये जायज़ है। अल्लाहु अकबर। ऐसे लोग होते हैं सेल्फलेस, अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, किसी से कोई हसद नहीं और मखलूक़ की दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने में अपना नुकसान भी गवारा करते हैं। अल्लाहु अकबर। एक बाग में मुलाजिम रखा गया। मालिक आ गया एक दिन और मालिक ने मुलाजिम को कहा, एक फल तोड़ कर लाओ। मुलाजिम फल तोड़ कर लाया, फ्रूट। मालिक ने हमदर्दी में उसके कुछ टुकड़े काटे और पहले उस खिदमत खादिम को खिलाया, मियाँ ये खाओ, खुश हो जाओ। वो खादिम खुशी खुशी खाता रहा, एक फांक, एक पीस, दूसरा पीस। मालिक ने एक पीस लेकर अपने मुंह में रखा तो बहुत ही कड़वा फल था, फ्रूट बहुत ही कड़वा था। मालिक ने हैरत से देखा अपने मुलाजिम को और पूछा, अरे मियाँ, ये इतना कड़वा फ्रूट मैं तुम्हें खिला रहा था, लेकिन तुम मुस्कुरा रहे हो, थैंक यू शुक्रिया कर रहे हो, मुझे बताया क्यों नहीं कि ये फल बहुत ही ख़राब है? मुलाजिम ने कहा, मेरे आका, आप मुझे 10 साल से खिला रहे हैं और मुझे इनामात दे रहे हैं, एक दिन अगर एक फल कड़वा निकल गया तो उसमें क्या नुकसान है, उस पर भी मुस्कुराना है। ये बात समझ में आ जाए तो हमारे घरों में कोई झगड़े ना हो। जो लोग 10-10 साल से खिदमत कर रहे हैं, अगर एक दिन डांट डपट कर दी, एक दिन गुस्सा कर लिया, तो क्या नुकसान है, उसको पी जाए, उसको बर्दाश्त कर ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तालीम हुई मस्जिद में और अमीर और गरीब सब बैठे थे। गरीब का ये जहन बना कि भाई पैसों से कुछ नहीं होता, अल्लाह के करने से होता है, अल्लाह पाक मेरे काम बनाएंगे, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गरीब अपने घर चला गया। अमीर का ये जहन बना कि देखो मियाँ, ये माल जो है इम्तहान के लिए है, ये माल जेवर जवाहरात ये इसलिए हैं कि इसकी ज़कात निकाली जाए, और अगर ज़कात नहीं निकाली तो आखरत में बहुत बड़ा मसला होगा, और ये माल जो है, ये सोना चांदी, ये तपाया जाएगा और इससे जिस्म को दागा जाएगा, तो ये तो वबाल हो गया। तो अमीर बहुत घबराया, मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया। अब अमीर ने जल्दी जल्दी अपनी ज़कात का हिसाब किया घर जाकर, और ज़कात को थैले में बंद करके गरीब की तलाश में चल पड़ा। अब ढूंढते ढूंढते वो अमीर गरीब के दरवाज़े पर खड़ा है, नॉक कर रहा है, अरे भाई बाहर आइए, बहुत ज़रूरी काम है। गरीब बाहर आया। अमीर ने कहा, साहब ये आपके लिए ज़कात है, ये पैसे, ये सोना चांदी आप कबूल फरमाइए, बड़ी इनायत होगी। गरीब ने कहा, अरे मियाँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं, मैं तो अल्लाह ताला मेरे काम बनाएंगे और पैसों से तो कुछ होता नहीं है, अल्लाह पाक मुझे खैर और बरकत देंगे, जो मेरे पास है मेरे लिए काफ़ी है, मुझको नहीं चाहिए। अमीर बहुत घबराया, अरे भाई ले लो, अरे भाई ले लो। और फिर गरीब ने कहा, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं। तो अमीर ने कहा, अरे भाई आप नहीं लेते तो चलो किसी और का पता बता दो। तो गरीब ने कहा, चलो मैं बता देता हूँ, फलां फलां गली में जाओ, जाओ कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जाकर दे दो। जब दुनिया आखरत की हकीकत समझ में आ जाए तो ऐसे किस्से पेश आते हैं। यतीम बच्ची दुकान पर आ गई, दुकानों में धक्के खा रही है, कोई मदद नहीं कर रहा। दुकानदार ने कहा, क्या चाहिए और क्या लाई है? उसने कहा, 5 रुपए लाए हैं या $1 लेकर आए हैं, उसमें आटा भी दे दो, चावल भी दे दो, तेल भी दे दो, शक्कर भी दे दो, ये घर में हमारी ज़रूरत है। दुकानदार बहुत नाराज़, अरे $1 में, 5 रुपयों में पूरी दुकान ख़रीदने आई है, भाग यहाँ से। बच्ची कह रही है, भाई हम यतीम लोग हैं, मेरी अम्मा बेवा है, वो घरों में बर्तन बर्तन मांझ कर गुजारा करती है, घरों में खिदमत करती है, आज उसको कोई काम नहीं मिला, आज उसकी आमदनी नहीं हुई, बस हमारे पास यही एक नोट रह गया था, हम उसको लेकर कुछ ख़रीदने आए हैं, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो। सब दुकानदारों ने धक्के मार मार कर निकाल दिया। एक दुकानदार अल्लाह वाला, उसने देखा यतीम बच्ची है, रो रही है, लाओ भाई सामान की ग्रोसरी शॉपिंग की लिस्ट, क्या चाहिए? 500 का माल मुफ्त में दिया और अपने मुलाजिम को भेजकर घर पर पहुंचाया, अरे भाई इसको देकर आओ।
जब घर पर गए तो देखा कि बच्चियां बीमार पड़ी हैं। अरे भाई, अब मेरे खर्च से इनका इलाज कराओ। देखा कि बच्चियां बड़ी हो गई हैं, उनकी शादी के लिए कोई खर्च मौजूद नहीं अम्मा के पास। सब घर वालों को बैठा कर दुकानदार ने मशवरा किया कि अरे भाई, अगर हम इनकी शादी करा दें, कुछ खर्च कर दें, गरीबों का भला हो जाएगा। अब क्या हुआ, घर में महीनों के बाद जब चूल्हा जला, आग जली, खाना पका, बच्चियों ने पेट भर कर खाना खाया, अब उनके दिल से जो दुआ निकलेगी तो अल्लाह पाक, जो ज़मीन आसमान के ख़जानों के मालिक हैं, उस दुकानदार से कितना राज़ी होंगे और दुनिया और आखरत में उसको बरकतें और भलाइयाँ अता फरमाएंगे। अल्लाह हू अकबर। अगर सब मुसलमान ठीक से ज़कात निकालें तो कोई भूखा ना रहे। अगर सब मुसलमान अपनी शादियां बच्चियों की सादगी के साथ करें तो दुनिया में किसी बच्ची की शादी ना रुके। जब इंसाफ का निज़ाम, इकराम मुस्लिम का निज़ाम कायम होता है, खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में अफ्रीका तक के इलाक़े में जहां इस्लाम पहुंचा, ज़कात लेने वाले नहीं मिलते थे। यानी हर आदमी इतना खुशहाल हो गया कि अमीर लोग ज़कात लेकर निकलते तो उनको कोई गरीब नज़र नहीं आता था कि किसको ज़कात दें। इतना खुशहाली का निज़ाम। भेड़िया और बकरी एक ही घाट से पानी पीते थे। अल्लाह अकबर। पहले ज़माने का एक वाक़या है, दो नेक लोगों का। एक आदमी ने अपनी ज़मीन बेची दूसरे आदमी को। रियाजुस सालहीन में, हदीस की किताबों में तफसील से ये वाक़या है। ख़रीदार ने जब ख़रीदने वाले ने ज़मीन की खुदाई की तो ज़मीन में से एक संदूक निकला, एक बॉक्स। उसके अंदर कीमती सोना, उसके अंदर गोल्ड, उसके अंदर ज्वेलरी और उसके अंदर मिलियंस का सामान, कीमती सामान। ख़रीदने वाला भागा भागा बेचने वाले के पास आया। अरे भाई, मैंने तो ज़मीन ख़रीदी थी, उसमें से ख़ज़ाना निकल आया। ये ख़ज़ाना आपका है, वापस ले लीजिए। बेचने वाले ने कहा, अरे भाई, मैं जब ज़मीन बेच चुका तो अब उसमें से जो भी निकले तुम्हारा ही है, ये भाई, ये आप ही रखो। दोनों में आपस में इख्तलाफ हो गया। ये ख़ज़ाना मिलियंस का आपका है भाई साहब, आप लीजिए। उन्होंने कहा, ये ख़ज़ाना मिलियंस का आपका है, आप लीजिए, मैं नहीं लेता। दोनों कोर्ट में चले गए, अदालत में। काजी और जज के सामने मुकदमा आया कि अरे भाई, ये दोनों कह रहे हैं कि ये ख़ज़ाना जो मिलियंस का है, मेरा नहीं है, दूसरे को दिलवाइए, उसको दीजिए, उसका हक है। अल्लाह अकबर। जब मुसलमान का मुकाम और इंसानियत की हकीकत और आखरत का डर समझ में आ जाए तो ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। क़यामत में एक आदमी का हिसाब होगा, अरे भाई, इसकी नेकियां तौलो, इसके गुनाह भी तौलो। मालूम हुआ कि एक नेकी कम पड़ गई। देखो मियाँ, एक नेकी और लाते तो जन्नत में भेज देते। जन्नत के टिकट के लिए एक नेकी और चाहिए। अब वो आदमी मारा मारा फिरेगा अम्मा अब्बा के पास, दोस्त भाई बहन के पास, कोई उसको नेकी नहीं देगा। हर आदमी नफसा नफसी, मेरी तो अपनी नेकियां कम है, मालूम नहीं क्या हिसाब हो। तो वो आदमी परेशान हैरान है, मैदान हशर में एक नेकी के लिए मारा मारा फिर रहा है। यहाँ तक कि एक गुनहगार आदमी के पास पहुँचा। गुनहगार आदमी ने कहा, मियाँ, मेरी तो सारी उम्र में गुनाह ही गुनाह है नामे अमाल में। हाँ, मेरे पास एक नेकी है, ऐसा करो कि ये नेकी मैं तुमको दे देता हूँ, तुम्हारा काम बन जाए, तुम जन्नत में चले जाओ। ये आदमी खुशी खुशी एक नेकी लेकर आया। अल्लाह मियाँ, एक नेकी मिल गई। पूछा जाएगा, ये नेकी तुम्हें किसने दे दी, आज के दिन तो कोई नहीं देता। बुला उसको भी। वो आदमी भी आ गया तो उसको फरमाएंगे कि अरे, तू मुझसे ज़्यादा सखी बनता है, तू भी जन्नत में जा और दूसरा आदमी तुम भी जन्नत में चले जाओ। अल्लाह पाक रहम का करम का मामला फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। जन्नत में लोगों को अल्लाह का दीदार होगा। सबसे बड़ी खुशी अल्लाह का दीदार। कुछ लोगों को अल्लाह पाक का दीदार हफ्ते में एक मर्तबा होगा, कुछ लोगों को अल्लाह पाक का दीदार सुबह शाम हुआ करेगा दिन में दो मरतबा, और कुछ लोगों को अल्लाह पाक का दीदार जब चाहें उस वक्त हुआ करेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक हमें आपको दीन की खिदमत में भाईचारे मोहब्बत का पैगाम मुसलमानों में फैलाने के लिए अल्लाह पाक हमें आपको कबूल फरमाए। दरूद शरीफ पढ़कर सारी उम्मत के लिए, अपने लिए, महलों, ख़ानदानों, हर एक भाई बहन के लिए दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दावात। या अल्लाह, या रहमान, या करीम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या हय्यू या क़य्यूम। اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت کی گناہوں کی بخشش فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت میں جو لوگ تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، اے اللہ آسان رزق عطا فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت میں جو لوگ، جو مسلمان بھائی بہن علم دین سیکھ رہے ہیں، अल्लाह नफ़ा देने वाला इल्म अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की ख़ताएँ माफ़ फ़रमा दीजिए, उनकी गफलत और सुस्ती दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह शैतान और नफ्स के बहकाने से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह ज़माने के फितनों और मुसीबतों और आफात से अमन में रखिए। ऐ अल्लाह उम्मत की बेइज्जती को इज़्ज़त से बदल दीजिए। ऐ अल्लाह उम्मत के खौफ को अमन से बदल दीजिए। ऐ अल्लाह उम्मत की बदहाली और परेशानी को खुशी से बदल दीजिए। ऐ अल्लाह हर वक्त अपनी याद और ज़िक्र और शुक्र और अच्छी नियतें और दुआओं की तौफीक अता फ़रमाइए। ऐ अल्लाह हमारे अवकात में बरकत अता फ़रमाइए। ऐ अल्लाह हमारे जान माल और रिस्क में बरकतें अता फ़रमाइए। ऐ अल्लाह हमारी सारी परेशानियाँ, घरों के मामलात, सारी मुश्किलात आसान फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह वो सिफ़ात अता फ़रमाइए जिससे हम आपके महबूब बंदे बन जाएं। सिद्क और तक़वा और इखलास, सादगी और शर्म हया और जज्बा ख़िदमत और दावत की फ़िक्र हमारे दिलों में डाल दीजिए। अंबिया कराम और सिद्दीकीन और सालिहीन सहाबा के अखलाक और आमाल नसीब फ़रमाइए। ऐ अल्लाह हमें 100% दीन पर चलने वाले, दीन फैलाने वाले बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमें औलिया सिद्दीकीन के दर्जात अता फ़रमाइए। सब्र और शुक्र और एहसान की कैफियत अता फ़रमाइए। ऐ अल्लाह हमारी ज़बानों और नज़रों और दिल की हिफाजत करने वाले बना दीजिए। ऐ अल्लाह जो सिफ़ात आपको महबूब हैं हम सब के अंदर डाल दीजिए। लोगों को माफ़ करने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह वो तमाम बुरे ख्यालात और बुरे अखलाक, ऐ अल्लाह तमाम शर की सिफ़ात, उनसे हमारे दिलों को पाक फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को नफ्स मुतमईना बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर रखिए। ऐ अल्लाह हमें हयात तय्यबा अता फ़रमाइए। ऐ अल्लाह हमें दीन की आली खिदमत के लिए कबूल फ़रमाइए। ऐ अल्लाह बेकार, फजूल और लायानी बातों से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दीजिए। ऐ अल्लाह अपनी खुशी के कामों में दौड़ने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत का बाग अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह दीनी कामों के लिए हमें ऊंची ऊंची नियतें अता फ़रमाइए और बुलंद हिम्मतें और इरादे अता फ़रमाइए। कुर्बानी का जज्बा अता फ़रमाइए। ऐ अल्लाह इखलास अता फ़रमाइए, इस्तिकामत अता फ़रमाइए। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين